भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य,
नारायणं नमस्कृत्य,
नरं चैव नरोत्तमं,
नरं चैव नरोत्तमं,
देवीं सरस्वतीं व्यासं,
देवीं सरस्वतीं व्यासं,
ततो जयमुदीरये,
ततो जयमुदीरये,
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु,
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु,
नित्यं भागवत सेवया,
नित्यं भागवत सेवया,
भगवत्युत्तम श्लोके,
भगवत्युत्तम श्लोके,
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी,
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 21वां अध्याय, महाराज पृथु द्वारा उपदेश, श्लोक संख्या 21। राजा उवाच,
राजा उवाच,
सभ्याः
सभ्याः
शृणुत
शृणुत,
भद्रं
भद्रं,
वह
वह,
साधवः
साधवः,
ये
ये
इह
इह,
आगताः
आगताः,
सत्सु
सत्सु,
जिज्ञासुभिः
जिज्ञासुभिः,
धर्मं
धर्मं,
आवेद्यं
आवेद्यं,
स्वमनीषितं
स्वमनीषितं।
राजोवाच,
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागताः,
साधवो य इहागताः,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वमनीषितं,
आवेद्यं स्वमनीषितं।
राजोवाच,
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागताः,
साधवो य इहागताः,
गताः
गताः,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वमनीषितं,
आवेद्यं स्वमनीषितं।
राजोवाच,
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागताः,
साधवो य इहागताः,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वमनीषितं,
आवेद्यं स्वमनीषितं।
राजोवाच,
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागताः,
साधवो य इहागताः,
सत्सु जिज्ञासु धर्मं,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वं स्वमनीषितम्,
आवेद्यं स्वमनीषितम्।
राजोवाच,
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागता,
साधवो य इहागता,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वमनीषितम्,
आवेद्यं स्वमनीषितम्।
राजोवाच,
सभ्यः शृणुत भद्रं वः,
साधवो य इहागताः,
सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मं,
आवेद्यं स्वमनीषितम्।
राजा उवाच
राजा ने कहा
सभ्याः
सभ्याः
हे देवियों और सज्जनों श्रीमत कृपा करके सुनिए भद्रम कल्याण वह तुम्हारा साधवः
समस्त महापुरुष
ये
जो
इह
यहाँ
आगताः उपस्थित सत्सु
भद्र पुरुषों के प्रति
जिज्ञासुभिः जानने के इच्छुक धर्मम
धार्मिक नियम
आवेद्यम
निवेदन करे
स्वमनीषितम अपना निश्चय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्रजनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य, प्रस्तुत श्लोक में साधवः समस्त महापुरुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकतावादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे। भले ही वे अपने आप को व्यक्त न कर सकें, किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की, फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण चार अवगुणों से युक्त रहता है। यद्यपि पृथु महाराज इन सब से ऊपर थे, तो भी उन्होंने सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार यहाँ पर उपस्थित ऋषियों मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पृथ्वी महाराज एक आदर्श राजा है, एक आदर्श मनुष्य है, एक आदर्श भक्त भी है। तो भरी सभा में बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे, महापुरुष संत ऋषि मुनि सब थे और थोड़े अन्य लोग भी थे जो हो सकता है इतने सभ्य न भी हुए हों, परंतु अनेक लोग ऐसे थे जो बहुत सभ्य थे। तो पृथु महाराज ने अपने विचारों को व्यक्त करते समय बड़ा एक विनीत स्वरूप स्वीकार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हमारे लिए है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवे तरोजना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो जो लोग नेता होते हैं समाज में किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, नेता केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई नेता होते हैं, तो उनके पद चिन्हों में अन्य लोग चलते हैं। और जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं साधारण लोग भी वैसे ही करना शुरू करते हैं। और कहीं से तो शुरू होता है कोई बात, फिर बात फैलने लगती है। तो ये शुरू होता है कहीं से, कोई एक बहुत प्रसिद्ध है, कोई संगीतकार हो, कोई कलाकार हो, तो वो अपना बाल इतना काट देते हैं, ऐसा काट देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ लगते थे तो वो करते हैं ना, तो सब लोग बाकी करना शुरू कर देते हैं। वो कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। वो कोई कपड़ा पहनेंगे जानबूझकर फटे हुए इधर उधर, ऐसे नहीं कि वो गरीब है, जानबूझकर उसको बहुत ज़्यादा पैसा देते फटे हुए खरीदने के लिए, वो ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि उन्हें छेद होना चाहिए सही जगह पे। तो ऐसे छेद युक्त कपड़े भी पहनते हैं तो ये भी एकदम सबके लिए आकर्षक हो जाता है। अरे वो आदमी पहन रहा है, वो संगीतकार है, वो कलाकार है, वो जो भी है खिलाड़ी है, उसने बाल ऐसे रखे तो हम भी रखेंगे। सयत् प्रमाणं प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो लोग उनका उनके पीछे पीछे चलेंगे। अनुवर्तते का क्या मतलब? पीछे पीछे चलना। ऐसे वो लोग करेंगे, लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। ये घटना आपको बताई कि नहीं मुझे याद नहीं कभी, लेकिन जब मैं बम्बई मंदिर में रहता था, चौपाटी मंदिर में, तो उस समय मैं अध्यक्ष था वहाँ मंदिर का। और उस समय ये मोबाइल फ़ोन वगैरह सब नहीं था, आया नहीं था, केवल वो ट्रिंग ट्रिंग वाला वो फ़ोन था उधर, काला वाला बड़ा, उसको कड़र कड़र कर घुमाना पड़ता था ना वो, हाँ देखा है वो फ़ोन आजकल है कि नहीं मालूम नहीं, हाँ वो कड़ कड़ घुमाने वाले फ़ोन आजकल नहीं है शायद, कभी देखा है ऐसा फ़ोन? ऋषिकेश ने देखा ही नहीं देखा सर? नहीं देखा। केवल जिनका आयु 30 से ज़्यादा उन्होंने देखा होगा कुछ नहीं तो पहले के वो ट्रिंग ट्रिंग ऐसा, तो बार बार बंद पड़ता था वो। बार बार वो फोन वालों को बुलाना पड़ता था सरकारी ऑफिस से, आओ। और फिर हर बार जब आते थे कभी नहीं आते थे, और मंदिर में एक ही फोन था, तो इससे बहुत कष्ट होता था ना, क्योंकि जब नहीं काम कर रहा है तो किसी से बात करना है, फिर और कहीं जाओ, दूसरे जगह जाओ, वहाँ से फ़ोन करो। तो बार बार बुलाते थे, उनको समय नहीं होता था, कभी आते कभी नहीं आते। आते भी थे तो एक बार में ठीक करके नहीं जाते थे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मैं जाके देखता हूँ लाइन में क्या हो गया, ऐसे करके हमेशा कुछ ना कुछ होता था। फिर एक दिन मुझे संशय होने लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ये जानबूझकर कर रहा है ऐसे। ये जो कर्मचारी है वो जाता था ना, तो जानबूझकर वो कुछ गड़बड़ करता है लाइन में या उधर जो भी उनका है करता है। फिर मैंने किसी को बोला कि आप जरा देखो क्या है, जो जानकार एक भक्त थे। फिर उनको पकड़ा हमने, वो कुछ जानबूझ के गड़बड़ करता था। फिर हमने उसको बिठाया, बोले कि तुम ऐसे क्यों करते हो भाई, क्योंकि हर बार जब वो आते थे उनको थोड़ा दक्षिणा देना पड़ता था ना, बख्शिश कुछ तो देना पड़ता था, नहीं तो अगली बार नहीं आए। तो हमने पूछा, देखो तुमको पता नहीं ये मंदिर है ना, तो तुम मंदिर के लिए ऐसे करोगे तो क्या बार बार तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें, हर बार आते हो 100-200 लेके जाते हो, उस टाइम में 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा था ना, तो इतना 100 रुपये हर बार लेके जाते हो, तो वो भी मंदिर से या मंदिर में कुछ गड़बड़ करके करते हो, तो अच्छा नहीं ना करें। तो ऐसा प्रचार करने के लिए तो मैंने कोशिश किया। फिर उसने उत्तर क्या दिया, उस समय हुआ क्या था कि महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको पद छोड़ के जाना पड़ा था, क्योंकि बहुत बड़े सीमेंट के खरीद के घोटाले में वो अटक गए थे। कोई घोटाला किया था उन्होंने, पैसे का गोलमाल किया था बहुत बड़े पैमाने पर, और ये सारे अखबारों में समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में आता था ये, वो सब वो चले गए थे और कोई दूसरे आए थे मुख्यमंत्री, लेकिन फिलहाल हुआ था तो सबको याद था। तो जब मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो भारी पड़ेगा तुम इतना क्यों कैसा भ्रष्टाचार ठीक नहीं, तो उसने उत्तर दिया, हमारा मुख्यमंत्री करते तो हम क्यों नहीं करेंगे। सीधा उसने बोल दिया। फिर मैंने सोचा क्या बोलेंगे अभी इसको, तो मैंने बोला जो भी है अभी बाकी लोग करते हैं इसलिए आपको भी करना है ऐसे जरूर, थोड़ा मैंने बात किया उससे। फिर तो उसका निवेदन किया कम से कम अभी मत करो ऐसे, तो उसके बाद समस्या बंद हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी समाज में नेता रहते हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मनोरंजन के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो सब उनके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। हमको भी ऐसे ही करना, उन्होंने किया ना हम भी करेंगे, लोकस्तंत्र अनुवर्तते। तो इसलिए जो नेता होते हैं उनको बहुत सावधान होना होता है कि हम हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए सबके सामने, कैसे बात करना चाहिए, बोल चाल रहन सहन ये सब कैसे होना चाहिए। तो जब पृथु महाराज ने ही यज्ञ करना चाहा, तो उस समय क्या हुआ याद है ना किसी को, क्या हुआ?
इंद्र देवता ने वो यज्ञ का जो घोड़ा था इसको चोरी कर दिया।
हाँ, यज्ञ का घोड़ा, कौन सा यज्ञ था वो? अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्रदेव एक यज्ञ के लिए क्यों घोड़ा चोरी कर दिया?
क्योंकि उनको डर था कि मेरा पद जाएगा।
क्यों?
क्योंकि 100 यज्ञ करने से इंद्र का पद प्राप्त
होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता है उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। और पृथु महाराज ने कितने संपन्न किए थे?
99
और 100वां करने जा रहे थे। तो जब 100वां शुरू किया तो इंद्रदेव ने सोचा कि अरे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, अभी पृथु महाराज ने 100 कर लिए तो वो इंद्र बन जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। इंद्र भी भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये भक्ति करते हैं फिर भी ऐसे कैसे रहते हैं, होता है ऐसे इंद्र के साथ भी होता है, शुद्ध जब नहीं होते पूरी तरह से और भौतिक इच्छाएं रहती है मन में, कभी कभी भक्त समाज में भी हम देखते हैं किसी को कोई पद चाहिए होता है, किसी को कुछ मेरे को ये बनना है, अध्यक्ष बनना है, मेरे को ये बनना है वो बनना है, भक्त हैं अच्छे लेकिन फिर भी ये है वो भी इच्छा। तो इंद्रदेव को बहुत आसक्ति थी अपने पद से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो घोड़ा ही चोरी कर लिया, क्योंकि अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े को, घोड़े की भूमिका यज्ञ में बहुत महत्वपूर्ण होती है अश्वमेध यज्ञ में, और घोड़ा ना हो तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो इंद्रदेव ने क्या किया, वो घोड़ा ही चोरी करके ले गया। लेकिन किस तरह से चोरी कर ली, जब वो भाग रहे थे घोड़े को देखकर, घोड़े को लेकर, तो ऋतु महाराज के पुत्र ने देखा वो भाग रहे हैं, साधुओं ने हल्ला किया, अरे देखो देखो चोरी करके ले गए ले गए ले गए, बाकी लोग कोई नहीं देख पाए थे लेकिन साधु लोगों ने देख लिया, तो फिर पीछे चले गए उनके, और इंद्रदेव ने देखा कि अरे ये इतना शक्तिशाली राजकुमार है वो मेरा पीछा कर रहा है, तो घोड़े को छोड़कर वो भागे अपने आप को बचाने के लिए। फिर दूसरी बार भी ऐसे किया, ऐसे अनेकों बार किया, फिर अंततः पृथु महाराज एक ऐसे यज्ञ करने गए ब्राह्मणों के द्वारा जिसमें इंद्रदेव को आहुति देना चाहते, वो भी आके आग में गिर पड़े जल जाए, क्योंकि तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा नहीं ऐसा नहीं करो, ये हमारा थोड़ा इंद्र है लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ है उसका, क्षमा करो इसको, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना। पृथु महाराज के पुत्र का नाम क्या हुआ उसकी घटना के बाद, विजिताश्व, क्या मतलब इसका,
घोड़े अश्व को जीत लिया,
हाँ जिसने घोड़े को जीत लिया, इसलिए पृथु महाराज के पुत्र का नाम उसके बाद हुआ विजिताश्व। अश्व अश्व अर्थात
घोड़ा।
तो इंद्रदेव ने घोड़ा चोरी करते समय क्या किया, कौन सा वेश धारण किया, अलग अलग साधुओं का वेश धारण किया और नए नए काल्पनिक संन्यास आश्रमों का की स्थापना की उन्होंने, जो कि अधिकृत नहीं थे, कापालिका कभी ये कभी वो, को खोपड़ी में से भी खाते हैं ना वो, या को कुछ करते हैं खोपड़ी खोपड़ी लेके, फिर कोई तपये करते हैं है ना, वो तंत्र मंत्र सब करते हैं ना, काला जादू करना ये करना वो करना, तरह तरह के लोग होते हैं गांव में, जैसे जाएंगे तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो ऐसे तरह तरह के वैराग्य तथा कथित वैराग्य लोग होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर पृथु महाराज से कहा नहीं ऐसा मत करो, अभी छोड़ दो जाने दो, इंद्रदेव को क्षमा कर दो, क्योंकि जितना आप ऐसे करोगे वैसे वैसे ये धर्म को और बिगाड़ते जाएगा, नया नया ये तथा कथित जो है साधुओं की के वेश बदल के आएगा, और इससे क्या होगा कि समाज में बहुत बड़ा एक अपप्रचार हो जाएगा कि साधु लोग ऐसे होते हैं इत्यादि। तो फिर इंद्रदेव ने मान लिया, पृथु महाराज मान लिया और फिर वो बंद कर दिया, 99 से संतुष्ट हो गए। वो वास्तव में ऐसे प्रतीत हो सकता है कि इंद्र की जीत हुई, परंतु वास्तव में पृथु महाराज की जीत हुई, क्योंकि उनको भगवान की कृपा मिली। खैर, कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्र ने गलत उदाहरण प्रस्तुत किए स्वर्ग के राजा सबसे पहली बार, और कुछ तरह तरह के संन्यास और वैरागी वेश उन्होंने धारण किए जो नकली थे, जो जिस जो धोखेबाजी के थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो तुम। लेकिन उन्होंने उदाहरण दे दिया था, वो परंपरा भी चलती आई, वो नकली साधुओं की परंपरा भी चलती गई समाज में, इंद्रदेव ने ऐसे इनका परिचय करा दिया समाज में। तो देखो जो नेतृत्व के स्थान में होते हैं, जब वो कुछ ऐसा कर लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए जो ऊपर के पद में होते हैं उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग फिर करेंगे ऐसे ही करेंगे। कई बार क्या होता है, सब जगह अपने गलती को लोग नहीं देखते हैं ना, क्योंकि उनको वो भी करते हैं तो हमको क्यों बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, होता है कि नहीं? जैसे वो टेलीफोन वाले ने, कर्मचारी ने किया ना, हमको क्यों, जब मुख्यमंत्री करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसी प्रकार से समाज में भी बच्चे भी होते हैं ना, घर में किसी इसमें किसी को डांटो, मेरे को क्यों डांटो, उसको डांटो। आश्रम में भी ऐसे ही होता है, मंदिर में भी होता है, समाज में भी होता है, क्यों मेरे को क्यों डांटो, उनको बोलो। तो ठीक है, उनको भी बोलना चाहिए, परंतु गलती हमने की ना, तो दूसरे ने भी गलती की, इसलिए हम उसके पीछे क्यों छुपना चाहते हैं। हमने गलती की तो वो हमको स्वीकार करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। उसने भी किया तो हम दोनों एक दूसरे के आश्रय में रहेंगे नहीं। तो इसलिए एक जो एक ऐसे पद में होते हैं जिससे अन्यों के ऊपर वो तो प्रभाव होता है उनका, तो उनको सावधानी से रहना चाहिए। तो पृथु महाराज यहाँ पर बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि वो राजा है, पहले तो कर चुके हैं वो अश्वमेध यज्ञ आदि सब, इसके बाद में आएगा, बाद इसके आएगा,
हो गया
ना, तो कर चुके हैं वो है। सबसे अच्छा उदाहरण दे चुके हैं वो, शक्ति अविश अवतार हैं भगवान के। तो ऐसे भरी सभा में जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, तो उनका स्वभाव ये होता है कि कभी घमंड आ जाता है उनके हृदय में, और घमंड के कारण वो उल्टा सीधा कुछ बात करते हैं, घमंड से बात करते हैं। किसी के हृदय में जब घमंड होता है ना, तो आसानी से पता चलता है कि उसके वचन में आ ही जाता है, उसके मुँह पर आ ही जाता है, उसके व्यवहार में और उसके बोल में, बोली में उसका घमंड निकल ही जाता है, जितना भी वो छुपाने का प्रयास करे ना। तो इसलिए घमंड आसानी से छुपाया नहीं जा सकता है। तो पृथु महाराज बता रहे हैं हमको अपने उदाहरण से कि कैसे अन्यों के सामने हमारा व्यवहार होना चाहिए, भले हम कितने भी योग्य क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु साधारण लोगों के समाज में भी हमें कैसे रहना चाहिए। और फिर जब साधु महापुरुष संत मुनि आदि होते हैं तो उनके सामने और कितना सभ्य रीति से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि पृथु महाराज ने बड़े विनीत ढंग से, विनीत अर्थात नम्रता से, विनीत होकर उन्होंने किया, साधुओं के सामने बात करना शुरू किया। कभी कभी ऐसे होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है तो आमने सामने देखता नहीं किसके सामने कैसे बात करना, सम्माननीय लोगों के सामने कैसे बात करना नहीं पता। तो जब हम वो वाणी की संस्कृति का शिविर कर रहे थे तो उसमें हमने इसके बारे में एक लीला बताई थी महाभारत की, किसी को याद है?
वो कृष्ण और दुर्योधन, कृष्ण और युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में जो हुआ था, युधिष्ठिर अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए गए क्योंकि उन्होंने गांडीव का अपमान किया था, तो इसलिए फिर कृष्ण ने फिर उस समय पे अर्जुन को उस पाप करने से बचाने के लिए फिर उनसे कहा कि आप ठीक है, आप उनको मारना चाहते हैं तो आप उनके उनका अपमान करो।
क्यों?
क्योंकि बड़े वरिष्ठ जो होते हैं उनका यदि अपमान कर
देते हैं, क्यों चाहिए,
क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि
क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि जो भी गांडीव धनुष का मेरे अपमान करेगा मैं उसको मार डालूंगा। तो अभी युधिष्ठिर महाराज ने अपमानित किया गुस्से में, अरे क्या तुम्हारा गांडीव बाण धनुष कुछ नहीं उपयोग, देखो वहाँ क्या चल रहा है युद्ध में। तो अर्जुन को गुस्सा आया, मेरा गांडीव बाण का अपमान किया, मैंने वचन लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज को मारने जा रहे थे, उस समय कृष्ण बोला एन रे अपने बड़े भाई को मार रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, तो मैंने वचन लिया है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे वचन तोड़ना चाहिए। तो फिर कृष्ण के सामने ये मुद्दा रहा, अर्जुन का वचन भी बचाए रखना है और युधिष्ठिर महाराज की जान भी बचानी है, कैसे किया जाए। फिर
तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि आप उनके उनका अपमान करो, अपवचन बोलिए। तो उसने जब कनिष्ठ जब वरिष्ठ का ऐसे अपमान करता है तो लगभग वो कनिष्ठ वरिष्ठ की हत्या करने के समान है।
तो जो सम्मान हमारे लिए जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनके साथ हम अपमानजनक वचन बोलेंगे तो उनको मारने के समान है ये। और तो खास करके अर्जुन ने बहुत बोल दिया ऐसे हो वैसे हो, आप शिववीर नहीं है, है तो केवल भीम है वीर, ऐसे बहुत सी चीज़ें बोली। और उन्होंने कैसे संबोधन किया युधिष्ठिर महाराज का, तुम कह के, आप कह के नहीं, तुम या तू कह के किया। जो जिनके सम्मान जैसे अभी विद्यार्थी छात्र है वो पाठशाला में जाता है और फिर अपने अध्यापक को तू कह के बोलता है, कैसे होगा, कैसे लगेगा अध्यापक को, कैसे लगा, अरे ये बच्चा मेरे को तू बोल रहा है, तुम भी नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए ना। तो ये बड़े लोग की हत्या करने के बराबर हो जाता है। तो फिर क्या किया अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन ने बोल दिया
तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लगा और अर्जुन को भी बहुत बुरा लगा कि मैंने मेरे बड़े भाई का अपमान किया। तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए
दोबारा तलवार उठाया। तो कृष्ण ने क्या क्या किया, अभी क्या हो गया पहले बार उठाया था युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए, अभी क्यों उठाया, अपने आप को मारने के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर महाराज का अपमान किया, मेरे वचन को रखने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ा, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर
तो फिर इस समय तो भी कृष्ण को ऐसे चाल चलना पड़ा, एक योजना करना पड़ा कि अर्जुन का भी जान बचे और अर्जुन को भी सांत्वना मिले ताकि उनको उनका जो प्रायश्चित है वो भी हो। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि आपको फिर अपने आप का आपके जो बड़े होते हैं उनके सामने अपने आप का गुणगान करना चाहिए, जब ऐसे करते हैं तो अपने मृत्यु के समान है,
आत्महत्या
के समान है। तो फिर अर्जुन को अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ा युधिष्ठिर महाराज के सामने।
बहुत अच्छा। तो अभी अर्जुन ने ठान लिया कि मेरे को आत्महत्या करना है क्योंकि मैंने युधिष्ठिर महाराज का अपमान ऐसे किया। तो कृष्ण के सामने और एक मुद्दा खड़ा हो गया कि अरे ये क्या कह दिया, और ठीक है ऐसे करो, जब बड़ों का अपमान करते हो तो उनकी हत्या करने के बराबर हो जाता है, जब स्वयं अन्यों के सामने अपनी प्रशंसा करो तो वह आत्महत्या के समान है। तो अभी तुम अपनी प्रशंसा करते रहो, तो तुम्हारी जो इच्छा है कि मैं आत्महत्या करूँगा वो पूर्ण हो जाएगी। तो फिर युधिष्ठिर अर्जुन ने क्या किया, उठे और खूब अपने पूछा, अरे मेरी शक्ति क्या है, मैं ऐसे देखो मेरी वजह से राजस्व यज्ञ के लिए धन इकट्ठा किया था, मैंने इसे ये इतने सैनिकों को मारा था, मैंने देखो मैं और फिर अर्जुन को ये सब खत्म तो किया, फिर अर्जुन को बहुत बुरा लगा दे रहे थे, लेकिन कम से कम वो परिस्थिति से निकल गए। उधर युधिष्ठिर महाराज को क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने तलवार उठाया, बोला अरे आप कभी क्यों तलवार उठा रहे, अब ऐसे अपमान सुन के मैं जी नहीं सकता तो तो ऐसे फिर अंत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन युधिष्ठिर को दोनों मिला के फिर शांत कर दिया। फिर अर्जुन जाके पैर पड़ा, युधिष्ठिर महाराज का दंडवत प्रणाम किया, फिर दोनों ने आलिंगन किया, सब ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़ों का अपमान करना और अन्यों के सामने अपना बड़प्पन करना, मैं कितना बड़ा हूँ, तो वो हत्या करने के बराबर है और ये आत्महत्या के बराबर है। और जब हम बड़ों के सामने जाके, सम्माननीय व्यक्तियों के सामने जाके अपना बड़प्पन करेंगे तो क्या होगा, और भी ज़्यादा खतरनाक है वो। तो इसलिए पृथु महाराज स्वयं इतने बड़े होने के बाद भी जब वो सम्माननीय लोगों के समाज में गए, उनके सामने गए, तो बहुत सावधानी से बात कर रहे थे, बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से वो बोल रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी इसी बात को यहाँ पर तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़े शत्रु भी थे, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सभा में पृथु महाराज के शत्रु हुए होंगे, परंतु पृथु महाराज ने उनकी परवाह न की। उनकी परवाह न करते हुए उन्होंने साधुओं का ख्याल रखा कि ये सब उपस्थित हैं, इस सबको सम्मान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब मैं बड़ा हो गया, अब किसी को सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कितने सारे घटनाएं हैं जब इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया तो बृहस्पति गुस्सा होकर निकल गए आश्रम में से, दरबार में से, और फिर इंद्रदेव को शाप मिला। फिर पृथ्वी पे आके उनको पशु देह मिला, और उस समय नहुष नाम के एक राजा थे, उनको थोड़े समय के लिए इंद्र का पद मिला, और बाद में फिर इंद्र को वापस अपना स्थान मिल गया। कहने का मतलब है कि जब ऐसे सम्माननीय व्यक्तियों के सामने कैसे बात करना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना ये नहीं जानते हैं, तो इससे न केवल ये असभ्यता का लक्षण है, परंतु इसके दुष्परिणाम होते हैं, गलत परिणाम होते हैं इसके। तो पृथु महाराज ये सारी संस्कृति और सभ्यता भली भांति जानते थे कि साधुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो राज ऋषि होते थे, बड़े बड़े राजा, जब उनके दरबार में कोई ऋषि आते थे तो स्वयं अपने सिंहासन से उठ के उन ऋषियों को वहाँ पर बिठाते थे सिंहासन पर, और उनके चरण धोते थे। तो विनम्र होना ये बहुत आवश्यक है, घमंड आ जाएगा तो जितने भी हमारे सद्गुण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि अपना बड़प्पन जब हम करते हैं, जितना हम अपना बड़प्पन करते हैं, अपने पुण्यों को, अपने सद्गुणों को हम खत्म करते हैं। और जब अन्यों की निंदा करते हैं तो उनके दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जो जिस गुण का हम वर्णन कर रहे हैं, ये ऐसा है ऐसा, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इस तरह से पृथु महाराज एक आदर्श नेता है, उन्होंने बतलाया है कि कैसे सभा में बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। फिर भी रूपा जी बोलते हैं, उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार से पृथ्वी महाराज हम सबको सिखला रहे हैं कि हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
हम दूसरों की अगर दूसरों की स्तुति करते हैं तो उसका परिणाम क्या है?
योग्य व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो अच्छा होगा, अयोग्य व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हम भी उसकी तरह ही बन जाएंगे। सही तरह की प्रशंसा करनी चाहिए सही व्यक्तियों की। वो सोव रहा उष्ट्र है ना भागवत में श्लोक कौन सा है जानते हैं?
सोविंद वराह पुरुष संस्कृत पुरुष पशु हो न यत् कर्ण तथो वेदे सा जातो नाम बदल जाए।
क्या मतलब? श्व वेद वराह उष्ट्र, ये क्या है? चार। श्व मतलब
कुत्ता,
वेद मतलब वेद,
गला
गला गला वेद, फिर वराह उष्ट खरे, हाँ स्वभिक मतलब जो कुत्ता है, सुअर सुअर है तो वो तो वराह हो गया, वराह सुअर है। उष्ट मतलब ऊंट ऊंट, और खरा मतलब गधा। तो फिर क्या मतलब इसका श्लोक का?
संस्कृत पुरुष और पशु, यदि ये लोग मतलब ये लोग उनकी निंदा करते हैं कि
ये लोग संस्तुत मतलब क्या? स्तुति करना।
ये लोग उनकी स्तुति करते हैं जो लोग भगवान के भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं वो उनकी ये करते हैं। सॉरी सब कुछ आप याद नहीं आ रहा
है। इसको याद है इसका मतलब? श्लोक भले याद ना हो लेकिन इसका अर्थ
पुरुष पशु हो, यानी कि ऐसे जो पशु पुरुष के रूप में पशु रहते हैं उनका वो स्तुति करते हैं।
भगवान की स्तुति जो गदाधर भगवान की स्तुतियों को सुनते नहीं वो व्यक्ति ऐसे चार पशु समान है।
जैसे
पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते।
तो यदि हम ऐसे लोगों की स्तुति करें जिनको भगवान में कोई रुचि नहीं है तो हम कैसे हो जाते हैं? भागवतम के अनुसार जो लोग ऐसी स्तुति करते हैं वो किसके समान है? कुत्ते के समान, गधे के समान, सुअर के समान, ऊंट के समान। तो ऐसे लोगों की स्तुति करने से हम ऐसे बन जाते हैं भागवतम के अनुसार। इसलिए एक दूसरे की स्तुति करते रह जाते हैं सब लोग। हाँ वो कौन सा श्लोक है? उष्ट्रा नाम विवाहेशु गर्दभेन च जायते अहो रूपम अहो ध्वनि इदं प्रशंसतः, ऐसा कुछ है श्लोक। कि एक बार एक ऊंट का शादी हुआ, ऊंट एक शादी में गया, ऊंट का शादी हुआ या ऊंट उष्टन, हाँ ऊंट का शादी हुआ। तो दोनों अभी वर वधु मंच पे खड़े थे और सारे जंगल के प्राणी आ गए, तो रिसेप्शन हो रहा था उधर, तो सब लोग मंच पे आ रहे थे एक करके कोई देना करना, तो गधा भी आ गया उधर। तो गधे ने भी जब देखा उनको तो खूब स्तुति करने शुरू किया, अहो रूपम अहो रूपम, ऊँटों को देखा कि आपका रूप कितना सुंदर है। अब ऊँट का रूप सुंदर होता है क्या? नहीं, कैसा दिखता है ऊँट? विचित्र दिखता है ना, सब टेढ़ा मेढ़ा, सब जगह टेढ़ा उसका शरीर होता है कि नहीं? पीठ भी टेढ़ा उसका, ये गर्दन टेढ़ा, मुंह भी कैसे कुरूप होता है, सुंदर नहीं होता है ऊँट का मुँह। लेकिन ये गधे ने उसको स्तुति किया, अरे कितने सुंदर लगे, कितने सुंदर लग रहे हो, अहो रूपम अहो रूपम। तो ऊँट ने क्या किया, ऊँट ने भी गधे की स्तुति करना शुरू कर दिया, अहो ध्वनि ही अहो ध्वनि, ये आपका आवाज क्या मधुर है, कितना मीठा है, कितनी मीठे गीत गाते हो। ऊँट की आवाज, गधे की आवाज कैसे होती है?
कर्कश।
हाँ
बहुत कर्कश।
हाँ अच्छा नहीं है ना एकदम, कान को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये ऊँट और गधे की एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, ऐसे होता है, कोई मतलब ही नहीं इसका। लेकिन भगवान की स्तुति करने से, भगवान के महान भक्तों की स्तुति करने से हमको शुद्धिकरण होता है, लाभ होता है।
और अभी जो समाज में जो प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी अनुवर्तते करते हैं, तो उनको कैसे हम समझा सकते हैं कि उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि
हमको समाज में सही नायक चाहिए। नायक मतलब समझे ना, हीरो 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 नायक, नहीं तो कौन नायक बन जाते हैं? सिनेमा के अभिनेता वो हमारे नायक बन जाते हैं, खेल खेल के कोई बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं वो हमारे नायक बन जाते हैं, बहुत धनी कोई उद्योगपति हो वो हमारे धनी बन हमारे नायक बन जाते हैं, और फिर हम उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। परंतु हमारा सच्चा समाज में आवश्यक ये है कि सच्चे नायक उनको बताएं, सच्चे नायक तो भगवान कृष्ण है, उनको अपना नायक बनाओ। आप देखोगे तरुण पीढ़ी में, खास करके विद्यार्थियों में, छात्रों में, कॉलेज में इत्यादि, अपने कमरों में क्या रखते हैं, किसका चित्र रखते हैं?
अभिनेता,
सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री, खेल खिलाड़ी, कोई संगीतकार, ये उनको अपने नायक बना के आरती वारती सब करते हैं, बोर भी चढ़ाते होंगे तो उनको रखते हैं, उनके नायक बन गए तो उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन ये सिनेमा के और अभिनेता अभिनेत्री की तस्वीर न रख के भगवान के चित्र रखेंगे और उनको अपना नायक बनाएंगे, फिर उनके पद चिन्हों में चलेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए समाज में लोगों की वृत्ति है कि कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसको हम पालन कर सके और हम उनके पद चिन्हों में चलेंगे। एक नायक हर एक को चाहिए। नास्तिक लोग भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, अरे आपके इसमें आप लोग ये भक्त हो ऐसे वैसे, लेकिन आप भी तो पूजा करते हो, आप भी सचिन तेंदुलकर और ये शाहरुख खान ये इन सब आप भी करते हो ना, आपके कमरे में ये सब लगा है ना, तो हम भगवान की पूजा करते हैं, आप इनकी पूजा करते हो, फर्क इतना ही है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क भी है। वो कारवार में हमारे भक्त समाज में एक बहुत अच्छे भक्त हैं जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। बचपन से नाम माता पिता ने रखा है ऐसे, उस समय वो खिलाड़ी नहीं थे दूसरे, तो जहाँ भी जाते हैं तो अभी कृष्ण भक्त बन गए तो सब कहाँ ठीक है। तो नायक चाहिए सबको समाज में, तो सही नायक को सामने होना चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, ये हमारे नायक होने चाहिए। तो सही नायकों से पहचान करानी चाहिए समाज में लोगों की, ये हमारे आदर्श हैं, न कि कोई खिलाड़ी और अभिनेता।
सेवा रहेगा उस समय पे और समय की कमी भी रहेगा, लेकिन हम और हमको पता रहता है कि कोई जो हमारे सामने हैं वरिष्ठ भक्त हैं वो आए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उस समय पे उन्होंने उसमें इंटरफेयर करते हैं कभी कभी, तो सेवा में बाधा आने का कुछ प्रॉब्लम्स होता है कभी कभी ऐसे, तो उस समय पे क्या होता है कि उसके लिए जो भक्त रहता है या पक्षनर रहता है वो उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसको पता भी रहता है कि बाद में वो जाके क्षमा मांगना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन वो समय में जो सिचुएशन है वो पॉइंट पे जो सिचुएशन आता है उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इधर सेवा में बाधा हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम हो सकता है।
तो दोनों साथ में करना चाहिए, सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। सेवा भी बिगड़ना नहीं चाहिए और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, यह है बुद्धिमानी। इस तरह से बात करना चाहिए ताकि वो सुनने वाला समझ जाए और सेवा भी नहीं बिगड़े। इसलिए भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। काम बद्ध हो भगवान के भक्त हो मुक्त पुरुष हो, जो भी अपना जीवन भगवान के लिए बिताते हैं वो थोड़े बद्ध होते हैं।
भक्त में हम रहते हैं तो हो सकता है, अगर कोई दूसरे के साथ हम रहते हैं तो
कैसे? वही भक्त हो अभक्त हो हमेशा सोच समझ के बर्ताव करना चाहिए, ये अरे तुरे में नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं रात को रहूँगा इधर, रहूँ क्या? तो कल सुबह फिर 11-12 बजे जाऊँगा इधर, 11 बजे आए तो ठीक है। हाँ हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की गोकुल धाम की जय। गौर प्रेमानंदे।